તારીખ 26/7/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 738 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 142.
જો અંતર બાહ્ય દશા ભાવલિંગી નિરાકૃતિ એસી દશા કી ભાવના ના કરકે બારા પદ મેં હું છઠ્ઠે સાતમે ગુણ સ્થાન કે જો સ્વાભાવિક પરિસ્થિતિ હોતી હૈ વો દર્શાય और भावना भी भाई। अब 13वें पद में ऊपर के 8वें गुण स्थान की बात करते हैं। 7 गुण स्थान छठे और 7वें गुण स्थान में मुनिराज हजारों बार आवागमन करते हैं, लेकिन मध्यम कोटि का 7वां गुण स्थान रहता है तो यहां से छूटकर छठे गुण स्थान में आते हैं। जघन्य मध्यम तक ये बात चलती रहती है। जो उत्कृष्ट 7वां गुण स्थान हो जाता है तो फिर छठे में नहीं आएंगे, फिर 7वें में से 8वें गुण स्थान में आएंगे और वहां से जो श्रेणी होती है ऊपर ऊपर के गुण स्थान की वो चालू हो जाती है। यानी 7वें गुण स्थान में तीव्र दशा होने पर, 7वें गुण स्थान में तीव्र दशा होने पर तो ऐसा पुरुषार्थ चलता है कि अंतर्मुख में 8, 9, 10, 12 चार गुण स्थान पूरा करके 13वें गुण स्थान में अरिहंत पद को मुनिराज प्राप्त होते हैं। उसी को जीवन मुक्त दशा कहने में आती है, क्योंकि आयु का जीवन चालू रहा और दशा मुक्त हो गई। चार जो घाती कर्म है उसका क्षय हो गया, क्षपक श्रेणी में ऐसी स्थिति बनती है। उसका वर्णन अभी आगे के पद में करेंगे। एम पराजय करे कारितो आयम ध्यान करम को भारतो श्रेणी क्षपक करी करिने चिंतन अतिशय सो अपूर आठवें गुण स्थान में सब कहा कि चारित्र मोह का पराजय कर दिया। छठे सातवें गुण स्थान में आराधना चालू थी, उस आराधना के कारण से चारित्र मोह का भी पराजय किया, चारित्र मोह को भी हरा दिया और इस प्रकार से चारित्र मोह को हरा करके पराजय करके अपूर्वकरण ऐसा गुण स्थान आया। वो 8वां गुण स्थान का नाम है अपूर्वकरण। ऐसी अपूर्व दशा कभी साधक को आई नहीं, आई तो केवल ज्ञान अंतर्मुख में हो जाएगा। तो ऐसे अपूर्वकरण गुण स्थान को प्राप्त किए किस भाव से, कि क्षपक श्रेणी से 8वें गुण स्थान में दो श्रेणी लग सकती है, एक उपशम श्रेणी और एक क्षपक श्रेणी। जो मुनिराज उपशम श्रेणी से आगे बढ़ते हैं तो दसवें गुण स्थान में से ग्यारहवें गुण स्थान में आते हैं, आठ नौ दस और ग्यारह गुण स्थान में आएगा। ग्यारह गुण स्थान में से फिर वो छूट करके गिर करके फिर छठे गुण स्थान में आ जाएंगे। तो क्षपक श्रेणी को आरूढ़ करेंगे तो नौ दस आठ नौ दस गुण स्थान से सीधे बारह गुण स्थान में आते हैं, तो ग्यारहवा गुण स्थान में नहीं आते हैं। ग्यारहवा गुण स्थान उपशम भाव के लिए है और बारहवा गुण स्थान क्षायिक भाव के लिए है। तो जिस मुनिराज का पुरुषार्थ उस प्रकार का उस जाति का उपशम जाति का होता है तो उसमें अपनी योग्यता दबी हुई रहती है, क्षय नहीं होती है, योग्यता प्रकट नहीं है, अयोग्यता प्रकट नहीं है। योग्यता उसको क्या कहे, अयोग्यता प्रकट नहीं है, इसलिए आठ नौ दस स्थान तक आगे बढ़ गए। ग्यारह में भी आए लेकिन ग्यारहवें गुण स्थान में से फिर छठे गुण स्थान में आ जाएंगे। फिर क्षपक श्रेणी में आएंगे तो क्षपक मैंने क्षय करने वाले, जिस अयोग्यता का क्षय कर देते हैं, जो योग्यता अयोग्यता को नहीं समझते उसको द्रव्य कर्म से समझाते हैं कि वहां द्रव्य कर्म का उपशम हुआ है, मतलब सत्ता में रहा है, द्रव्य कर्म सत्ता में रहा है तो उसको उसके सामने अयोग्यता भी सत्ता में रही है जो बाहर आ जाएगी। और क्षपक श्रेणी में अयोग्यता का भी क्षय होता है साथ साथ द्रव्य कर्म का भी क्षय हो जाता है, उसको कहते हैं क्षपक श्रेणी। तो यहाँ कृपालु देव ने भावना क्षपक श्रेणी की भाई है, उपशम श्रेणी की नहीं। तो हम तो क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे और क्षपक श्रेणी चढ़ करके आरूढ़ करके अनन्य चिंतन क्षपक श्रेणी में आरूढ़ करके, आरूढ़ करना मैंने चढ़ना, अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव, जो हमारा जो पूर्ण शुद्ध अतिशय शुद्ध स्वभाव है इसका अनन्य चिंतन मैंने, अनन्य एकाग्रता हमारी बन जाएगी। चिंतन यानी विकल्प नहीं। इधर सातवां गुण स्थान भी निर्विकल्प दशा का है, आठवां गुण स्थान भी निर्विकल्प दशा का है, नौवां गुण स्थान, दसवां गुण स्थान, ग्यारहवां गुण स्थान, बारहवां गुण स्थान सब निर्विकल्प दशा का है। तेरहवें गुण स्थान में तो निर्विकल्प विकल्प की कोई अपेक्षा लगती नहीं है, वो तो बात पूरी होगी, तो साधक दशा ही पूरी होगी, मुक्त दशा होगी। तो वहां अनन्य चिंतन मैंने, अनन्य मैंने एकाग्र चिंतन मैंने परिणमन, अतिशय शुद्ध स्वभाव रूप शुद्ध परिणमन आत्मा स्थान में रहता है। ऐसा अपूर्व अवसर, ऐसी हमारी अपूर्व दशा कब होगी, ऐसी भावना आते हैं। विश्व गुण स्थान के वर्णन नहीं किया है, सीधा बारहवा गुण स्थान की बात लिया है, क्योंकि वो तो अंतर्मुख में आ ही जाता है और वो केवल ज्ञान गम्य है। मुनिराज को भी वो बुद्धि गोचर वहां विषय नहीं होता है, क्योंकि वो तो निर्विकल्प दशा में चढ़ गए, तो बुद्धि लगाने का तो वहां कोई स्तर भी नहीं है, बौद्धिक स्तर ही खत्म हो गया। बुद्धि से विकल्प से पार होकर के ऐसी दशा होती है तो आठ नौ दस गुण स्थान तो बहुत तेजी से आ जाता है और सीधा ही बारहवें गुण स्थान में आ जाएंगे। बारहवें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह गुण स्थान, जहां मोह का सर्वांश क्षय हो जाता है, एक कण भी मोह का वहां उपस्थित नहीं रहेगा। चौदहवें पद लेंगे, मोह स्वयं रमण समुद्र करी प्यारा क्षेत्र मोह गुण उपमा दी गई है। इस 14 ब्रह्मांड में मनुष्य लोक में मध्य लोक में असंख्य द्वीप समुद्र है। कितने हैं? असंख्य। इसमें एक बीच में सबसे बीच में जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप गोलाई में है, सर्कल में। उसके फिरता लवण समुद्र है। लवण मैंने नमक, जिसका स्वाद नमकीन होता है, खारा होता है, ऐसा एक समुद्र है जो हम यहाँ भी उसका अनुभव करते हैं। फिर इसके डबल दूसरा द्वीप है गोलाई में, बेंगल्स के आकार से सब होता है। फिर बेंगल के आकार से इससे डबल समुद्र होता है। फिर इसे ऐसे ऐसे डबल 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 उतने द्वीप समुद्र है, असंख्य द्वीप समुद्र है। 45 लाख योजन में इसका डायमीटर है और असंख्य द्वीप समुद्र होता है। सबसे बड़ा आखिर का जो समुद्र है वो स्वयंभू रमण समुद्र है। वो सबसे बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है। इसकी उपमा दी गई है मोह को, कि इस संसार में मोह को जितना वो स्वयंभू रमण समुद्र को तिरने के बराबर है। जीव मोह के पास हार जाता है। तो जिसने मोह को जीता तो जगत वन्य पद को प्राप्त करता है, उसको जगत में सब नमस्कार करेंगे, इतने पवित्र दशा को वो प्राप्त करता है। मोह स्वयंभू रमण समुद्र तीर करके स्थिति, मैंने दशा, वहां स्थिति क्षीणमोह गुण स्थान के हो गई। क्षीणमोह मैंने 12वां गुण स्थान आया। 12वें गुण स्थान में के शुरुआत में, प्रारंभ में, बाकी रहा मोह क्षय होने जा रहा है और बहुत अल्प सेकंडों में तो पूरा पूरा 12वां गुण स्थान के अंत में पूरा मोह का क्षय हो जाएगा। अंत समय में 12वें गुण स्थान के अंत समय में पूरा पूरा मोह क्षय हो जाएगा। जहां मोह क्षय पूरा हो जाएगा तो अपना केवल ज्ञान का निधान प्रकट हो जाएगा। तो अपनी भावना बातें हैं कि मैं अपना केवल ज्ञान निधान को, केवल ज्ञान के खजाना को मैं खोलूंगा, प्रकट मेरा हो जाएगा। ऐसा पूर्ण वितराग, वहां पूर्ण वितराग दशा होती है। अंत समय में वहां पूर्ण स्वरूप वितराग हो जाता है। वितरागता पूर्ण होती है 12वें गुण स्थान में और 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। अब थोड़ा थोड़ा गुण स्थान अनुसार दर्शन ज्ञान चारित्र की क्या स्थिति है उसको देखें, कि दर्शन मैंने श्रद्धांत तो चतुर्थ गुण स्थान में पूरा हो जाता है और इसके बाद चारित्र 12वें गुण स्थान में पूरा होगा और केवल ज्ञान बाद में 13वें गुण स्थान में आएगा। तो पहले श्रद्धान पूर्ण होता है शुद्ध, फिर चारित्र शुद्ध होता है, फिर ज्ञान पूर्ण शुद्ध होता है। ज्ञान क्या नंबर में सबसे पीछे आता है, केवल ज्ञान बाद में होता है। ऐसे गुण को पूर्ण शुद्ध होने की वैज्ञानिक परिस्थिति है। ऐसा ही बनता है सबको। किसी को पहले पूर्व केवल ज्ञान हो जाए और बाद में चारित्र पूर्ण हो, ऐसा नहीं बनता।
चार प्रकार के जो प्रतिबंध है, चार प्रकार के प्रतिबंध है, वो मोह के हम मोह बराबर है।
हाँ, वो दर्शन मोह, चार प्रकार के प्रतिबंध में दर्शन मोह के परिणाम होते हैं। यहाँ तो चारित्र मोह की बात चल रही है, दर्शन मोह की तो बात चतुर्थ गुण स्थान के पहले पहले लेने की है। चतुर्थ गुण स्थान आया तो दर्शन मोह खत्म। इसके पहले जो प्रोसेस मुमुक्षु दशा में है, वहाँ दर्शन मोह को कमजोर करके उसका उपशम किया जाता है। तब उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है सबको। पहले पहले उपशम सम्यक दर्शन ही होता है, फिर क्षोपशम होता है। बारहवें गुण स्थान के अंत समय में मोह का क्षय होने से पूर्ण वितराग स्वरूप हो जाता है आत्मा, परिपूर्ण वितरागता प्रकट हो जाती है और फिर केवल ज्ञान निधान प्रकट हो जाता है अपना। ऐसी मेरी दशा, अपूर्व दशा कब आई, ऐसी भावना आई है ये 14वें पद में। 15वें पद में फिर ये केवल ज्ञान होता है तो क्या क्या होता है इसका वर्णन करेंगे। यहाँ से 13वें गुण स्थान की बात चलेंगे। चार कर्म कर्म घनघाती कहें, घाती नहीं कहें, घनघाती कहें, बहुत तीव्र है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और मोहनी, तो सब में ज्यादा से ज्यादा कोई खतरनाक है तो मोहनी है। आठों कर्म में आत्मसिद्धि में तो वो बात किया, कर्म अनंत प्रकार ना तेमा मुख्य आठ तेमा मुख्य मोहनी हणायते कौ पाठ। मोहने अन्य के लिए आत्मबोध आत्मज्ञान एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। यानी ज्ञान ही कारण है, वहां भी आया ज्ञान ही कारण है। क्या कहते हैं कि ज्ञानावरण आदि चार घाती कर्म है, बहुत घनिष्ठ है, उसका वहां व्यवच्छेद मैंने नाश हो जाता है, मूल में से उसका छेद हो जाता है, विशेष रूप से मूल रूप से छेद होता है, तो कहते हैं कि व्यवच्छेद किया। और वहां दूसरा भव होने का बीज अत्यंत नाश को प्राप्त होता है, नाश को प्राप्त होता ही नहीं, अत्यंत नाश को प्राप्त होता है। यानी जिसको केवल ज्ञान रूप मोक्ष पद की प्राप्ति हुई, उसका दूसरा भाव कभी किसी अपेक्षा से होता नहीं। भाव का बीज जल जाता है, बीज जल जाने से फिर कभी इसमें से अंकुर आएगा नहीं। तो ये 13वें गुण स्थान में आते ही भाव बीज खत्म हो गया, अब इसको कोई भाव होने वाला नहीं है। भगवान कभी अवतार लेते हैं नहीं, जन्म लेते नहीं, अवतार मैंने जन्म लेते नहीं। ये जैन दर्शन का विषय है, जगत में और बात चलती है। कि भगवान भी अवतार देते हैं, ये बात होता नहीं है। भाव का बीज का अत्यंत नाश हो जाए और सर्व भाव मैंने पूर्ण भाव, ज्ञाता दृष्टा का पूर्ण भाव के साथ शुद्धता रहती है, भाव को सर्व भाव मैंने पूर्ण रूप से, नाता दृष्टा भाव रहता है, साथ साथ पूर्ण शुद्धता भी हो जाती है। पूर्ण शुद्धता मैंने अनुजीवी गुण की पूर्ण शुद्धता होती है। ये सब शास्त्रीय बातें हैं, संक्षेप में बोल देंगे। जीव में अनंत गुण है, उसमें कितने जीव अनुजीवी गुण है, कितने प्रतिजीवी गुण है। प्रतिजीवी मैंने क्या, पुद्गल कर्म के पुद्गल के साथ संबंध रखने वाले, अपेक्षा रखने वाले, उसको प्रतिजीवी गुण कहते हैं। जैसे आयु कर्म है तो आयु कर्म पूरा होने से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो जाता है पूरा, और अव्यवाधत्व प्रकट हो जाता है। तो वो उस प्रकार का देह छूट जाता है तब ये बात होती है, अघाती कर्म का भी नाश होने से। तो वो प्रतिजीवी गुण की बात है। दर्शन ज्ञान चारित्र वीर पुरुषार्थ जो है सुख है वो अनुजीवी गुण है। तो अनुजीवी जीव को अनुसरण करने वाले, प्रतिजीवी में पुद्गल को अनुसरण करने वाले, ऐसे दो प्रकार के होते हैं। तो जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला में सब इस प्रकार के इसकी परिभाषा भी है। वो तो एक जानने का विषय। चार कर्म घनघाती नाश हो गया, भाव का बीज का भी नाश हो गया पूरा पूरा, पूर्ण नाता दृष्टा भाव होकर के पूर्ण शुद्धता हो गई और भगवान प्रभु प्रभुपद में आ गए। वहां साधक दशा पूरी होकर के प्रभुपद में आ गए, वो कृतकृत प्रभु हो गया और उनके वीर्य माने पुरुषार्थ का अनंत पुरुषार्थ प्रकाशमान मैंने प्रकट हो गया। ऐसी अपूर्व दशा हमारी कब आएगी कि भाव का बीज नाश होकर के पूर्ण नाता दृष्टा होकर के अनंत पुरुषार्थ हमारा प्रकट हो जाए, ऐसी दशा कब आएगी? और प्रभु पद में कब आरूढ़ हो जाएंगे, वितराग पद में, सर्वज्ञ पद में, जिनेन्द्र पद में? ये भावना तेरहवें गुण स्थान की रही। अब आगे कहते हैं सोलहवें पद में, वेद आदि चार कर्म से बड़ी सुंदरी वक्र मात्र जो के वेदनी चार अघाती कर्म, आयुष नाम गोत्र और वेदनी, वेदनी के आखिर में बोला जाता है तो आखिर का लिया कि वेदनीय आदि चार जो अघाती कर्म है वो वर्तता है। ये चार कर्म की उपस्थिति है, मौजूदगी तो है, लेकिन कैसी है कि जैसे कोई रस्सी जल जाती है और मात्र उसकी आकृति रह जाती है, वो रस्सी फिर कोई चीज बांधने के काम में नहीं आती। रस्सी को, डोरी को, डोरी कहते हैं सिंदरी मैंने काठी, काठी की डोरी होती है वो जल जाती है तो दिखती तो वैसी वैसी जली हुई, लेकिन उसको पकड़ो तो हाथ में दूरी आएगी नहीं, वो तो आकृति रही है। वैसे ये जो विघ्न आदि चार कर्म है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष कर्म और वेदनी कर्म, वो तो एक जली हुई डोरी के समान है। वो फिर जीव को बांधता, वो कर्म जीव को बांधेगा नहीं, बांध सकता नहीं, उसमें कोई शक्ति नहीं, वो तो जल गया है। लेकिन इसकी उपस्थिति है और आकृति मात्र है। कहाँ तक है इसकी स्थिति? कि जहां तक देह का आयुष्य है वहां तक है, आयुष कर्म तक, बाकी के तीन रहते हैं। वेदनी नाम गोत्र जो है वो आयुष कर्म तक रहेंगे, इसके आगे एक समय भी रहने वाले नहीं है। और आयुष पूर्ण होते ही देहिक पात्र, मैंने देह रूपी जो पात्र है वो मिट जाता है। जो 13वां गुण स्थान आया तो वहां परम औदारिक शरीर हो जाता है, एक औदारिक शरीर मिट जाता है। इसलिए इसमें आखिर तक रोग हो, उपसर्ग हो, परिसर हो, सब खत्म हो जाता है। 12वें गुण स्थान तक ये सब कुछ है। 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हुआ, उपसर्ग परिसर रोग शोक सब खत्म। परम औदारिक शरीर भगवान का हो जाता है, अरिहंत परमात्मा का, ट्रांसपेरेंट एकदम होता है। ऐसे जो देह का पात्र है वो आयुष पर्यंत है, तो आयु पूरा होने से ही वो देह है। तो ऐसे जैसे कपूर वातावरण में फैल जाता है, वेपोराइज हो जाता है, वैसे वातावरण में ये अरिहंत भगवान के जो देह के परमाणु है वो बिखर जाते हैं। तो ऐसा कुछ तो दे रहता नहीं है, आत्मा तो एक समय में सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। पहले 14वें गुण स्थान में आएगा, कुछ सेकंडों में सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। इस प्रकार से 13वां गुण स्थान जो देही पात्र के साथ होता है वो खत्म होता है जब आयु खत्म होता है समाप्त। उसमें कोई उतनी मर्यादा नहीं है कि उतना ही हो। जैसे सिमंदर भगवान को 16 लाख पूर्व का आयु है, 84 लाख पूर्व तक तो छद्मस्थ दशा है, 1 करोड़ पूर्व का आयु है, तो 16 लाख पूर्व तक अरिहंत दशा में रहेंगे देह के साथ। अनंत पुरुषार्थ प्रकट हो गया है, लेकिन वो अनंत पुरुषार्थ में घाती कर्म का जो उदय है उसमें वो अनंत वीर्य भी कुछ काम करता नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है पुरुषार्थ के साथ। इस पर से जो परमार्थ लेना है वो परमार्थ उतना लेना है कि हम जिस हमारे संयोगों की चिंता करते हैं, शरीर की चिंता करते हैं और अनुकूलता प्रतिकूलताओं की चिंता करते हैं, ये सब किस कर्म का उदय है? घाती कर्म का या अघाती कर्म का? ये तो अघाती का उदय है। जो अघाती कर्म में अनंत वीर्य भी काम नहीं करता है तो ये छद्मस्थ के वीर्य कौन सा काम करेगा? लेकिन हमारी अज्ञानवश परिस्थिति यह है कि जहां हम कुछ नहीं कर सकते वहां माथा लगाते हैं, फिर भी हमारी चलती नहीं है। क्योंकि वस्तु स्थिति है, अघाती कर्म है, ये वस्तु स्थिति है। घाती कर्म में जहां पुरुषार्थ काम करते हैं वहां हमारा पुरुषार्थ हम लगाते नहीं। 2400 घंटों अघाती में इसका वो करो, उसका वो करो, उसका वो करो, बात बिल्कुल विपरीत हो गई है। संसार में तो कोई अघाती कर्म का उदय को फिरफार कर सकते नहीं, लेकिन केवल ज्ञानी अनंत वीर्य प्रकाश जिसका हो गया वो भी कर सकते नहीं, जिनेन्द्र भी नहीं कर सकते, तो फिर दूसरे का तो क्या कहना, ये सब गड़बड़ है। लेकिन चिंता होती है, भय होता है, अगर हमारी सावधानी छूट जाएगी तो हमको नुकसान हो जाएगा, तो सावधानी से कोई नुकसान नहीं होवे ऐसी कोई गारंटी है क्या? और कौन सावधान नहीं है संसार में, अपने व्यवसाय में कौन संसारी जीव सावधान नहीं है? फिर भी जिसका जो होना होता है वही होता है, और नहीं होना होता है वो नहीं होता है। और कोई ठिकाना पड़े नहीं, ये आघाती का उदय है, इसमें पुरुषार्थ किसी का काम नहीं आता। लेकिन हमको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो हम वहां माथा लगाते हैं कि उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, करो उसको होवे, और कोई ठिकाना पड़े नहीं, ये आघाती का उदय है, इसमें पुरुषार्थ किसी का काम नहीं आता। लेकिन हमको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो हम वहां माथा लगाते हैं कि उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो। कहते हैं कि ये आयुष पर्यंत देह का पात्र है, बाद 14वां गुणस्थान आएगा, 13वां गुणस्थान वहां समाप्त हो जाएगा। ओ ऊ रू रू ऐसे चार अक्षर बोले उतने 14वां गुणस्थान की स्थिति है। मैंने एक दो सेकंड की बात है, तो 17वें पद में कहते हैं मन वचन काया छूटे आता है तो मन वचन काया सब प्रकार के जो पुद्गल हैं जिसको योग कहते हैं, संबंध है इसलिए मनोयोग वचन योग और काय योग, ये पुद्गल है। और बाकी के सर्व कर्म पुद्गल की वर्गणा है, कारमण वर्गणा, जो पूर्व के स्थिति में रहती वो सब पूरी हो जाती है, छूट जाती है, कोई कर्म नहीं रहता। अयोगी 14वां गुणस्थान वो निष्कर्म अवस्था है, भाव कर्म तो छूट गए 13वें गुणस्थान में आते ही, लेकिन द्रव्य कर्म कुछ रह गए, वो द्रव्य कर्म भी 14वें गुणस्थान में खत्म होता है, एकदम निष्कर्म दशा मान हो जाती है, और पुद्गलों का पूरा पूरा संबंध यहाँ ही छूट जाता है, इधर ही छूट जाता है, 14वें गुणस्थान में मध्यलोक में ही वो छूट जाता है। उसको यहाँ अयोगी गुणस्थान कहते हैं। 14वें गुणस्थान का नाम क्या है? अयोगी गुणस्थान। 13वें गुणस्थान का नाम है संयोगी गुणस्थान, स्वयोग, योग सहित का गुणस्थान 13वां होता है, योग रहित गुणस्थान 14वां होता है। ऐसा गुणस्थान वहां उत्पन्न होता है, और वो महाभाग्य है। क्या? पूर्ण मोक्ष दशा, निरावरण दशा पूर्ण हो गई, और अत्यंत सुखदायक पूर्ण दशा है, वो पूर्ण अबंध दशा है, सुखदायक भी है और पूर्ण अबंध भी है, वहां कोई कर्म का बंध फिर रहा नहीं, सब बंधन छूट गया। सुखदायक तो तेरहवें गुण स्थान से ही है, क्योंकि सुख है वो अनुजीवी गुण है, वो तो पूर्ण प्रकट हो गया तेरहवें गुण स्थान में। चौदह में भी उतना ही सुख है और फिर सिद्धालय में भी उतना ही सुख है। ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तेरहवें गुण स्थान में जो पूर्ण शुद्ध हुआ वही चौदह में, वही सिद्धालय में।
बारहवें गुण स्थान में पूर्ण विकराकता होती है, बारहवें में पूर्ण विकराकता होती है, वही पूर्ण सुख नहीं होता है,
वही पूर्ण सुख हो जाता है। बारहवें गुण स्थान में सुख हो जाता है,
बारहवें सुख पूर्ण हो जाता है,
चारित्र के साथ सुख का संबंध है। बारहवें गुण स्थान में सुख साथ में होता है, अनंत दान ज्ञान अनंत दर्शन। फिर बोला जाता है तेरहवें गुण स्थान में अनंत सुख और अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टि तेरहवें गुण में आता है, क्योंकि अंत समय वो होता है। बारहवें के अंत समय में जो चारित्र मोह खत्म होता है उसी वक्त दुख खत्म होता है। लेकिन यहां चारित्र पूर्ण हो गया तो दुख भी पूर्ण हो गया, इन दूसरे ही समय में तेरहवें गुण स्थान आ जाता है। वो महाभाग्य दशा है, सुखदायक दशा है और पूर्ण अबंध दशा है। ऐसा अपूर्व अवसर हमको कब आएगा ये भावना भाई की। अब वो इसके वर्णन और करते हैं अठारहवें पद में। एक परमात्र निमले एक परमाणु मात्र में मड़े न स्पर्श का। जब पूर्ण बंध दशा आई तो एक परमाणु भी संबंध रखता नहीं है जीव के साथ, कोई भी कारण वर्गणा या वचन वर्गणा कोई भी एक परमाणु का भी संबंध नहीं रहता, यानी स्पर्श नहीं रहता। पूर्ण कलंक रहित निष्कलंक, पूर्ण निष्कलंक दशा हो जाती है, जहां दोष नाम कलंक का अनंतवा भाग भी नहीं रहता। ऐसा पूर्ण निष्कलंक दशा में अडोल स्वरूप में भगवान विराजमान होते हैं। अडोल स्वरूप में वहां से फिर दोलायमान होते नहीं, च्युति नहीं होती। शुद्ध निरंजन चैतन्य मूर्ति अनन्यमय, निरंजन दाग बिना की, अंजन मैंने दाग, दाग बिना की शुद्ध चैतन्य मूर्ति अभेद मूर्ति अनन्यमय, मैंने अभेद स्वरूप है। और अगुरु लघु अमूर्त सहज पद रूप दो, फिर अगुरु लघु गुण का भी पूर्ण शुद्धि हो गई। अब कोई किसी भी प्रकार की विकृति आएगी नहीं, ऐसा अमूर्त मैंने जहां किसी भी प्रकार का मूर्तपना नहीं है, ऐसा अमूर्तपना हो जाएगा। देह छूट गया, पुद्गल छूट गया तो पुद्गल मूर्तिक है। हम जो देखते हैं शरीर को, ये मूर्तिक पुद्गल शरीर को देखते हैं, आत्मा को देखते नहीं है। ऐसा अमूर्त सहज पद है, यही प्रकट हो जाएगा। ऐसा अपूर्व अवसर हमें कवाएगा, ऐसे आगे बागे की स्थिति की भावना आते हैं। अब चौदहवा गुण स्थान पूरा होकर के पंद्रहवें गुण स्थान क्या कहें, सिद्धालय में भगवान विराजमान हो जाता है। तो पंद्रहवीं स्थिति है सिद्ध पद की। तो उसके विषय में कहते हैं 19वें पद, पूर्व प्रयोग कारण गमन से ताल प्राप्त सुचेत जो अनंत अनंत समाधि को अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सचेत जो अहो पूर्व प्रयोगादि कारणना योग थे, यानी पूर्व में जो साधना की प्रयोग मैंने यहाँ साधना की उस कारण से अब सिद्धालय में प्राप्ति हो जाएगी। साधना का अंत कहाँ आया कि सिद्धालय में जाने का आया। ये जो पूर्व प्रयोग है वो साधना है और उस साधना के कारण से ये आत्मा ऊर्ध्वगमन ऊपर 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 जाकर के सिद्धालय में स्थित हो जाएगा। सिद्धालय है जो अपना तो ब्रह्मांड है, इसके ऊपर सिद्ध शिला 45 लाख योजन की है और अनंत सिद्धात्माएं वहाँ विराजमान हो जाते हैं। जब संसार पूरा हो जाता है मुक्त दशा में सिद्धालय में, वहीं आत्मा की सादी अनंत काल शुरुआत से लेकर के अनंत काल वहीं स्थिति रहती है। तो वहाँ सुस्थित हो जाएंगे ऊपर जा करके और वहाँ क्या क्या होगा कि सादी अनंत अनंत समाधि सुख माँ, समाधि सुख है वो अनंत अनंत समाधि सुख की शुरुआत होकर के अनंत काल पर्यंत रहेगा। साथ में अनंत दर्शन अनंत ज्ञान वो भी साथ में रहेगा। ये तो 13वें गुण स्थान में प्रकट हो ही चुका है, लेकिन वही स्थिति सिद्धालय में भी वैसी की वैसी रहती है, कोई फर्क नहीं होता है। अब जिसको अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत पुरुषार्थ आदि प्रकट है और किसी भी प्रकार के अघाती का भी बंधन नहीं है, तो इससे बढ़िया कौन सी स्थिति हो सकती है। यही मोक्ष पद है, यही निर्वाण पद है और यही पद का लक्ष्य मुमुक्ष को मुमुक्षुता के प्रारंभ में होता है। हमारा वास्ता क्या है इससे, ये जो पूर्ण पद की बात किया कृपालु देव ने, हमारा क्या वास्ता है कि हमारा आदर्श वही है, हमारा लक्ष्य बिंदु भी वही है, ऐसा हमें होना है। पर यह भावना सम्यक दर्शन के बाद बहुत जोर से आती है। मुमुक्षुता के प्रारंभ में तो यही लक्ष्य से पुरुषार्थ का उत्थान होता है, यानी संवेग आता है परिणमन में, और जब सम्यक दर्शन होता है तब तो ये भावना के साथ पुरुषार्थ बहुत जोर से काम में लग जाता है और यही पद तक पहुंचता है। वहां तक वो थामता नहीं, जहां तक ऐसी दशा नहीं होती वहां तक वो कहीं थम्भेगा नहीं, क्योंकि लक्ष्य हो गया है। अब कहते हैं कि इस विषय में हमने 19 पद तो लिखे और इसमें ये दो पद है यहां से लेकर के जो बात किया मोक्ष दशा के आखिर में, उसको तो हम क्या कहें, ये तो दिव्य ध्वनि भी उसको कह सकती नहीं है। 20वां पद है,
जे पद श्री सर्व भगवान स्वरूप ने अन्य
पद सिद्धालय में जो प्राप्त होता है वो तो 13वें गुण स्थान में मालूम ज्ञान में आ जाता है। जहां जैसा अपना मूल में पूर्ण शुद्ध पद है सहजात्म स्वरूप, वैसी ही दशा निर्वाण पद सिद्धालय में होती है। जैसा मूल तत्व मूल स्वरूप आत्मा है वैसा का वैसी अवस्था भी वहां होती है। इसके पहले अवस्था में विकृति है सुख है, तो ऐसा पद का ज्ञान केवल ज्ञान में पहले समय में हो ही जाता है। पूर्ण शुद्धात्म पद भी ज्ञान में आता है और पूर्ण निर्वाण पद भी ज्ञान में आता है। भले 13वें गुण स्थान में अरबों वर्ष का आयु हो लेकिन पहले समय में अपनी सिद्ध दशा ज्ञान में आ जाती है और अपने अनंत अनंत गुण अनंत धर अनंत अवस्थाएं अपने सादी अनंत अनादि अनंत सब ज्ञान में आ जाती है। तो ऐसा जो पूर्ण स्वरूप है वो सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में देखा है, लेकिन वो भी उसको कह सके नहीं। क्यों? कि कहना वो आत्मा का धर्म नहीं है, वो आत्मा का कार्य नहीं है, वो पुद्गल का कार्य है। आवाज किसमें होती है? ये शब्दों की आवाज किसमें होती है? पुद्गल में होती है, आत्मा में नहीं होती है। ये परमाणु स्कंध परमाणुओं के स्कंध की पर्याय है, एक परमाणु में भी आवाज नहीं होता है। जब अनेक परमाणु फ्रिक्शन में आते हैं तब उसमें से आवाज निकलती है। इसलिए आवाज होने में जीव की कोई जरूरत नहीं है। बिना जीव भी आवाज आती है कि नहीं आती है? हाँ, ये टेप बजेगी कि नहीं बाद में? एग्जैक्टली जैसे बोलते हैं वैसे ही। इसमें जीव है क्या? बिना जीव भी आवाज होती है। आकाश में तो होता है, बिजली के आवाज होते हैं कि नहीं होते हैं? बादलों के आवाज होते हैं, रेडियो बोलता है, टीवी बोलता है, क्या है उसमें कोई जीव है क्या कि नहीं? तो वाणी है वो पुद्गल परमाणु की पर्याय है, पर उसकी जो शक्ति है आत्मस्वरूप को दिखाने के लिए वो बहुत मर्यादित है। सदमस्त की वाणी को तो क्या कहे, ऐसा कहेंगे? ते स्वरूप ने अन्य वाणी, अन्य वाणी मैंने सदमस्त की वाणी तो क्या कहेगी? भगवान को तो दिव्य ध्वनि होती है, दिव्य ध्वनि की बात तो कोई दूसरी है। किसी भी कोई भी कैसा भी वक्ता हो, चतुर से चतुर क्लास वन ऑरेटर सदमस्त, दिव्य ध्वनि के बराबरी में उसकी बराबरी भी की जाती नहीं है। इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ, बराबरी नहीं कर सकते। जाति अलग है परमाणु की, दिव्य ध्वनि है वो। तो ओंकार नाद स्वरूप होती है। समोह शरण में अरिहंत परमात्मा की उपस्थिति के कारण से, उपस्थिति के निमित्त से मुंह खोले बिना, और जीव कंठ हले बिना, वैसे एक ओंकार नाद घूमता है। उसको अनक्षरी वाणी कहते हैं, अक्षर नहीं होता उसमें, ओम ऐसा बस। उसमें से 700 महाभाषा और 1800 या 1400 कोई भी फिगर है लघु भाषा में ये परमाणु ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे आज यूनो में एक भाषा में बोलते हैं तो 20 भाषा में ट्रांसलेशन होता है कि नहीं होता है एट अ टाइम? ऐसे वहां भी बिना मशीनरी का अरेंजमेंट के, वहां कुछ नहीं है, फिर भी एक पुण्य योग ऐसा होता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि ऐसी होती है कि सब प्राणी जो सुनते हैं, मनुष्य देव और पशु पक्षी, वो तो अपने अपनी भाषा में भगवान के उपदेश को सुन सकते हैं अपनी योग्यता अनुसार समझ सकते हैं, सुन सकते हैं तो बराबर, लेकिन समझते हैं अपनी योग्यता अनुसार। तो कहते हैं कि ऐसा सर्वज्ञ आत्मपद को सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि भी नहीं बोल सके तो और कौन कह सकेगा। फिर भी ये पद का ज्ञान अनुभव गोचर तो होता ही है। ये बहुत बड़ी बात क्या है कृपानंद देव ने, कि भले ही हम अब नीचे के गुणस्थान में है, ग्रस्त दशा में है, अभी उन्हें दशा आई नहीं कि तो भावना भाई है, लेकिन हमारे अनुभव में वो पद आता है, अनुभव ज्ञान में वो पद आता है, वाणी में मत आओ, भले ही नहीं आओ वाणी में, लेकिन हमारे ज्ञान में आता है कि सर्वज्ञ पद क्या होता है, सिद्ध पद क्या होता है, या शुद्धात्मा कैसा होता है, ये पद हमारे ज्ञान में आता है, वो अनुभव ज्ञान है हमारा। वाणी में नहीं आए इसलिए ज्ञान में नहीं आए, ऐसी बात नहीं है। उस प्रकार से महिमा किया है सर्वज्ञ पद का या आत्म पद का, और साथ साथ अनुभव ज्ञान में ताकत कितनी है वो भी बताया है। और आगे आखिर का एक और पद है, उसमें भी भावना भाई है कि अवश्य हम ऐसे बनेंगे। एह परम पद प्राप्ति जो निर्वाण पद है, मोक्ष पद है, वही परम पद है, इसके आगे कोई पद नहीं होता, परम मैंने आखिर का पद है। इसका हम ध्यान किया, इसका लक्ष्य किया पहले से ही, ऐसा हमने ध्यान तो किया है, लेकिन इस परम पद अभी हो जाए ऐसी कोई ताकत हमारे में नहीं है। गजू एक मैंने ताकत, ऐसी ताकत वर्तमान में हमारे पुरुषार्थ में, प्रकट पुरुषार्थ में नहीं आई कि ऐसे हमारी दशा भी वर्तमान में हो जाए, लेकिन हमारा मनोरथ तो अवश्य है। मनोरथ मैंने हमारी ये महत्वाकांक्षा है, हमारी ये आकांक्षा है, मातुर है इस पद पाने के लिए। तो इसलिए इस मनोरथ के आधार से हमारे आत्मा में उसका निश्चय है, हमको प्रतीति है, खात्री है कि हम अवश्य इस पद को प्राप्त करेंगे, करेंगे और करेंगे ही। हमको शंका नहीं उठती कभी, हम लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे भगवान जाने, किसको पता क्या कल क्या होगा कि नहीं। हम तो अवश्य इस पद को प्राप्त करेंगे, लेकिन प्रभु आज्ञा से ये विनय किया, आखिर में भी विनय छोड़ा नहीं है। पुरुषार्थ तो अनंत पुरुषार्थ अपना प्रकट होगा, इसमें किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्या हुआ यहां तक पहुंचने में, क्या हुआ कि हमारे प्रभु हमारे श्री गुरु की आज्ञा का पालन किया तब हुआ, इसको भूले नहीं है। प्रभु आज्ञा से, गुरु आज्ञा है, परम गुरु की आज्ञा है, सब एक ही बात है। उस आज्ञा को हमने शिरोधार्य जब किया तब इस आज्ञा के कारण से हम इस परम पद की प्राप्ति करेंगे। साथ साथ विनय भी कर लिया है और अपना निर्धार है, निशंकता है वो भी बता दी है, और अपने आप को राजचंद्र मैंने अपने आप को कह देंगे हम तो अवश्य हो जाएंगे, नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस तरह से अपूर्व अवसर की भावना कृपालु देव ने पाई है और सभी साधकों को, सभी ज्ञानियों को ऐसी ही भावना आती है, भावना भावना के रूप में ऐसी ही होती है। कृपालु देव ने जो व्यक्त किया है वो एक बहुत हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कृपा हुई है कि आज हम इस बात को अपने योग्यता के अनुसार समझ सकते हैं।